जय श्री साई राम। साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दिन भारतवर्ष में होली मनाई जाती है। बहुत ही रंग बिरंगा त्योहार है ये, लेकिन होली को किस तरीके से मनाया जाता है जरा इस पे ध्यान देते हैं। खिलने वाली होली जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को पड़ती है, उससे एक दिन पहले होली का दहन होता है। होलिका दहन यानी को जला देना होलिका को। कहते हैं हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान समझता था और उनका पुत्र प्रहलाद नारायण की भक्ति में रत था। हिरण्यकश्यप से यह सहन नहीं होता था। उन्होंने अपने पुत्र को मरवाने के कई तरीके अपना लिए। जल में डुबोने का प्रयास किया, पहाड़ से फेंकने का प्रयास किया, लेकिन बच निकलता। कहते हैं हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसको वरदान था कि अगर वह अग्नि में बैठ जाए, अग्नि उसको नहीं जलाएगी। ये सुझाव किसने दिया? अगर होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाए अग्नि में, अगर होलिका अग्नि में बैठ जाए और प्रहलाद उनकी गोद में हो, पला तो जल के भस्म हो जाएगा, होलिका को कुछ होगा नहीं। तो ये प्रयास किया गया, लेकिन हुआ यूं कि अग्नि दहन में जब अग्नि प्रज्वलित की गई, अग्नि जलाई गई एक प्रकार से चिता से बनाकर जिसमें होलिका बैठी थी प्रहलाद को लेके, कुछ क्षण के बाद होलिका जल के भस्म हो गई, प्रहलाद बच गया। उस दिन से कहते हैं होलिका दहन की प्रथा आरंभ हुई है। लेकिन कहानी का मतलब क्या, प्रहलाद नारायण में रत था, उसने नारायण का इतना जाप किया था कि अपने भीतर के सारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार को जला के राख कर दिया था, कुछ बचा ही नहीं था। ये भी कह सकते हैं भी अगर आप परमात्मा में रहते हुए हैं, डूबे हुए हैं, इफ यू आर एब्जॉर्ब्ड इन गॉड, अग्नि भी आपका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हम क्या करते हैं होलिका दहन के दिन, हम कुछ अन्न को भूनते हैं। अब कोई बात समझ में नहीं आई, होली का त्योहार है, अन्न को भुनने का क्या मतलब हुआ? कहते हैं भुना हुआ अन्न अर्थात रोस्टेड सीड्स, कोई भी बीज हो वो दोबारा उग नहीं सकते। अगर किसी बीज को आप पृथ्वी में डाल दें कुछ समय के बाद वह पौधा बन सकता है, अंकुरित हो सकता है। लेकिन अगर बीज बुना हुआ है, रोस्टेड है, उसको आप मिट्टी में दबा दें वह कभी भी अंकुरित नहीं होगा। जब होलिका दहन के समय, होलिका दहन के समय अन्न को लेकर अग्नि में डाला जाता है, उसका तात्पर्य होता है कि मैं अपने सारे कर्मों को भस्म कर रहा हूं। यू हैव टू डू विद द फीलिंग। हम नहीं जानते हैं कि हमने जन्म जन्मांतरों में कौन से कर्म किए हैं। हो सकता है इस जीवन में हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, हमें कोई समस्याएं नहीं है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमारे पास धन संपत्ति सब कुछ है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कोई ऐसा कर्म हो पिछले जन्म जन्मांतरों का जो इंतजार कर रहा हो अंकुरित होने के लिए। जन्म मरण के चक्रव्यूह से अगर बाहर निकलना है तो हमारे को अपने कर्मों को भस्म करना होगा। कहते हैं ज्ञान की अग्नि से आप अपने कर्मों को भस्म कर सकते हैं। जो होलिका दहन, जो होलिका जलाना, जो होलिका दहन जिसे कह रहे हैं हम, उसका तात्पर्य है कि आप अपने अंतर झांक कर देखें। ये भी कहा जाता है कि भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। कहते हैं भगवान शंकर ध्यान में बैठे हुए थे, ओ कामदेव ने भगवान शंकर के अंदर वासना के बीज बोने का प्रयास किया। कहते शंकर भगवान ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। काम का अर्थ यहां पर सेक्सुअल डिजायर था, संभोग की इच्छा। लेकिन काम का अर्थ आपके डिजायर भी होते हैं, इच्छाएं भी होती हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, शायद आपको याद भी हो, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 62वें और 63वें श्लोक में ये कहा गया है, भाई ध्यायात विषयान पुंसा संगा तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः कामात क्रोधा अभिजायते। ये पहला श्लोक है, पांचवा श्लोक। अर्थात विषयों के चिंतन से आसक्ति आदि अवगुणों की उत्पत्ति और उनका पतन होता है, कथन है। विषयों के चिंतन से पुरुष के उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना क्रोध का रूप ले लेती है, हमारे जीवन में कई विघ्न आने लग जाते हैं। अगर आप नहीं, पहले अगला श्लोक भी देख लेते हैं। क्रोधात समूह भवती समूहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशः बुद्धिनाशत् प्रणश्यति प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम में पड़ जाती है, स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अब दोनों श्लोकों को अगर मिलाया जाए, भाई आप कोई विषय के बारे में सोच रहे हैं अर्थात मेटीरियल चीज के बारे में सोच रहे हैं, उस पर आप ध्यान लगाते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, बारम्बार उस चीज को देखते हैं, बारम्बार उसके बारे में सोचते हैं, ऐसे करने से आपके मन में उस वस्तु के प्रति काम जग जाता है, इच्छा हो जाती है, वो इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। अब वो अगर इच्छा नहीं पूरी होती है, नहीं मिल जाती, उसमें आसक्ति हो जाती है, आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, आसक्ति के मतलब इंडल्जेंस, वो आपकी कामना पूरी नहीं हो पाती, इच्छा पूरी नहीं होती है, योर डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड, तो क्या आता है? गुस्सा आता है, क्रोध आता है। फिर कहते हैं क्रोध जब आ जाता है, क्रोध से आपका मूड बदल जाता है। लिखा नहीं, बोला नहीं ना, क्रोधात समूह भवती, क्रोध से अत्यंत मूड भाव उत्पन्न होता है। समूहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रशांत, अर्थात एक उस मूड से जहां पर खराब मूड बन गया मान लो, उससे आपकी स्मृति अर्थात आपकी मेमोरी पावर भ्रम में पड़ जाती है, गेट इंटू इल्यूजन, गेट इंटू कंफ्यूजन, उसके भ्रम से पड़ने से आगे बोला बुद्धि नाशा, बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब आपकी मेमोरी पावर खराब हो रही है तो आपका ज्ञान भी नाश होने लग जाता है। बुद्धि नाशात, बुद्धि का नाश हो जाने से प्रणश्यति, ये पुरुष नीचे गिर जाता है, ऐसी स्थिति में आ जाता है, ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वह गिर जाता है। तो ये भी कहा गया भाई, जब हम होलिका जला रहे हैं उस समय जो अन्न डाल रहे हैं, बेसिकली सारांश में हम अपनी वासनाओं को भून रहे हैं, वासना को इतना भून रहे हैं कि उनमें से कोई दूसरी कामना उत्पन्न ना हो। बात समझे आप? अपनी वासनाओं को ऐसे भूनते जा रहे हैं कि उसमें से कुछ निकले नहीं बाद में, और वासना जाए खत्म हो जाए। फिर अगले दिन जो फाल्गुन मास के पूर्णिमा है, होली मनाई जाती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण उस दिन विवाह करके आए थे, गोपियों ने उनका स्वागत किया रंग बिरंगे फूलों से, धीरे धीरे उन फूलों ने रंगों की जगह ले ली, या रंगों ने फूलों की जगह ले ली, माफ कीजिएगा, पहले फूल होते थे, फूल का रस होता होगा शायद, फिर पाउडर बनने लग गया, फिर पाउडर का पानी मिला के लोग गुब्बारों में भर के डालने लग गया, पिचकारे पड़ने लग गया, बदलाव आता गया धीरे धीरे। अब रंगों की अपनी भाषा होती है, इतना हम कहते हैं, दुलेंदी भी कहते हैं, आप रंगों से खेल रहे हैं, असल में ये एक ऐसा समय होता है जिस समय मौसम भी बदल रहा होता है। सर्दी से गर्मी का मौसम आ रहा था भारतवर्ष में, और ऐसे बदलाव में कई बार आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको वायरल हो सकता है। इसलिए उस प्रकार के रंग, उस प्रकार के वनस्पतियों से रंग बनाए जाते थे जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो। रंग किसके होते थे विचार कीजिएगा। ऑरेंज कलर होता था पैलेस्ट्री से, ग्रीन होता था मेहंदी से, पीला येलो होता था हल्दी से, नीला ब्लू वो होता था बेरीज से, हिबिस्कस फ्लावर से, मजेंटा होता था बीट रूट से, चुकंदर से, ब्राउन कलर होता था सी लीव बोलते हैं, काला रंग होता था आमला ग्रेप से, अंगूरों से, नीम कुमकुम हंदी बिलवा, इस प्रकार के कई वनस्पतियों को लेके, कई फलों को लेके उनसे रंग बनाए जाते थे। वो रंग लगाने से आपके शरीर की काया सुंदर होती है, बीमारियां दूर होती हैं, तंदुरुस्ती आती है, देखने में सुंदर लगते हो। विचार कीजिएगा कितनी रिसर्च कर रखी थी, कितना शोध कर रखा था उस जमाने में लोगों ने। लेकिन रंगों की क्या भाषा है भाई? ये कलर है बैंगनी कलर, वायलेट कलर बोल सकते हो, वो होता है सेल्फ नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए। वो आपको एक मेंटल पावर देता है टू कनेक्ट विद इन योर सेल्फ, ताकि आप अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा से एक संपर्क स्थापित कर पाए, फिर आप दूसरों को भी अंतर की यात्रा में ले जाएं। इंडिगो कलर है नील रंग का, वो होता है इंट्यूशन पावर के लिए, परसेप्शन के लिए, अनुभूति के लिए, एंड हायर माइंड के लिए। आपके दिमाग का जो दाहिना साइड है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन, वो कहते हैं वहां से इंट्यूशन और परसेप्शन वहां से निकलती है, वो कंट्रोल करते हैं, वो आपको तीसरी आंख खोलने के लिए बाध्य भी करते हैं, वह आपको अंदर क्यों ले जाता है, कॉन्शियसनेस क्यों ले जाता है, आत्मा क्यों ले जाता है। नीला रंग वो है ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। कहते हैं लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ट्रूथनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें आपके अंदर आती हैं नीले रंग से। ये आपको इम्पार्शियल इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि आप उस प्रकार के अच्छे आइडियाज लोगों से पहुंचा पाए। फिर आता है हरा रंग, ग्रीन कलर, वो होता है बैलेंस के लिए, हार्मनी के लिए, ग्रोथ के लिए। ग्रीन कलर जो होता है कम्युनिकेशन के लिए भी होता है, जीवन में सारी समस्याएं हमारी कम्युनिकेशन से आती हैं। देखा होगा आपने बहुत सी समस्या, सारी तो नहीं, बहुत सी समस्याएं कम्युनिकेशन से आती हैं। बॉस अपने एम्प्लॉय से ठीक से बात नहीं कर पाता, मैसेज नहीं दे पाता, एम्प्लॉय बॉस तो नहीं कर पाता, पति पत्नी आपस में नहीं दे पाते, माँ बाप बच्चों से बात नहीं कर पाते, बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन गैप आ जाता। तो हरा रंग जो है ये आपको बेटर कम्युनिकेशन के लिए प्रेरित कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, साथ में ये भी कह रहा है कि इंटरनेट पे नहीं, इंटरनेट पे ध्यान दो। इंटरनेट से आप बाहर की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट जो आपके अंदर नेट है, या आपके अंदर कम्युनिकेशन टूल्स है, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा, आपके संस्कार, आपकी कामनाएं, आपकी वासनाएं, आपका चित्त, सब आपके अंदर है। उनमें आपस में कैसे तालमेल बिठाना है वो आपको पता लगेगा थ्रू इनर कम्युनिकेशन, अंतर से बात करने से। फिर आता है पीला रंग, येलो कलर, प्रकृति का रंग है, मन का कलर है, बुद्धि का कलर है, रंग है। ये आपके ब्रेन के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, या आप कहते हैं कि आपको एक कॉन्फिडेंस देता है टू रियलाइज योर सेल्फ, इनर सेल्फ एंड वननेस विद गॉड। आप अपने आप को अंतर में समझे हो, आप परमात्मा हैं, अहम ब्रह्म अस्मि, ये फीलिंग आपके अंदर आए। फिर आता है ऑरेंज कलर, संतरी, एडवेंचर, सोशल कम्युनिकेशन, ऑप्टिमिज्म के लिए। वो आपको सकारात्मक दृष्टि देता है, पॉजिटिवनेस देता है, यू विल कैरी ए पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ। अगर आप ऑरेंज कलर को या संतरी रंग को पहनते हैं या प्रयोग में लाते हैं, आपको ये मोटिवेट करता है, आपको प्रेरित करता है। फिर आता है लाल रंग, रेड कलर, कलर ऑफ एनर्जी, पैशन एंड एक्शन। ये आपको देता है लीडरशिप क्वालिटीज। आपके एम्बिशन को प्रमोट करता है, आपको डिटर्मिनेशन देता है, दृढ़ता देता है टू अचीव क्या द गोल ऑफ लाइफ। आपका जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए आपके अंदर दृढ़ता आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक आत्मशक्ति आ जाती है। हम शब्दों का प्रयोग करते हैं आत्मशक्ति, क्या मतलब हुआ? अपनी आत्मा पे आपका विश्वास, आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। फिर आता है पिंक कलर, गुलाबी रंग, जो कंपैशन, अनकंडीशनल लव और नर्चरिंग के लिए होता है। कंपैशन क्या? दया, दया धर्म का मूल है, पर सुना होगा आपने। अनकंडीशनल लव, हम जब लोगों से प्रेम करते हैं कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक अपेक्षा रहती है कि हम ये प्रेम कर रहे हैं ये मिलेगा, कुछ ना कुछ मन में है, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग, इन अदर वर्ड वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द पर्सन। अनकंडीशन का मतलब होता है इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्तें नहीं है। आपने गरीब बंदे को देखा, आपने जाकर सहायता कर दी, चले गया, आपने मुड़कर देखा भी नहीं, आपने अपना काम कर दिया, दैट्स ऑल। उसे कहा गया अनकंडीशनल लव। ये जो पिंक कलर है, जो गुलाबी रंग है, आपके अंदर इतना प्रेम जागृत कर देता है कि जो भी आपके ऑर्बिट में आए, जो भी आपके आसपास आए, आपके रेडियस में आए, आपके इर्द गिर्द आए, उसे आपके भीतर से पनपता हुआ प्रेम, उसका एहसास होता है। फिर आता है सफेद रंग, कलर ऑफ प्योरिटी, इनोसेंस, होलनेस एंड कंप्लीशन। आपने देखा है वो क्या बोलते हैं, रेनबो, इंद्रधनुष, उसमें कौन से रंग होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये होते हैं ना, बोलते हैं विप्योर, VIBGYOR। उसके ऊपर हमें दो कलर ऐड कर दिया, पिंक भी ऐड कर दिया, वाइट सफेद ऐड कर दिया, माफ कीजिएगा। ये भी जो कहा जाता है कि इन सातों रंगों से मिलाकर सफेद रंग बना है, या सफेद रंग से अगर तोड़ दिया जाए उनको तो उसमें से सात रंग निकलते हैं। सब रंगों को मिला के सफेद रंग क्या है? सबका मिला हुआ रंग, सबका रंग, सब रंग इकट्ठे हैं। उसे कहा गया होलनेस, कंप्लीट कलर, कलर ऑफ प्योरिटी। आप अपने आप ज़्यादा सोचिएगा, अगर आपके अंदर सेल्फ नॉलेज आ जाए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ जाए, इंट्यूशन आ जाए, परसेप्शन आ जाए, हायर माइंड के भांगे लग जाए, ट्रस्ट हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, बैलेंस आ जाए, हारमोनी आ जाए, आपकी ग्रोथ होने लग जाए, आपका माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन बुद्धि अंतरिक्ष यात्रा करने लग जाए, सोशल कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाए, ऑप्टिमिज्म आ जाए, एडवेंचर आ जाए, एनर्जी, पैशन, एक्शन, अनकंडीशनल लव, कंपैशन, नर्चरिंग, सब कुछ आ जाए, तो क्या होगा? कंप्लीट तो हो ही गया ना, सब कुछ आ गया आपके पास। कहते जब आप कंप्लीट हो जाते हैं, आप वो कंप्लीटनेस, वो पूर्णता, अगर आप पूर्ण हो गए हैं, आप औरों को भी पूर्ण बना सकते हैं। माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप कहते हैं मेरे पास काफी है, हमारे पास काफी है घर में, हम अपने बच्चों को सेटल करना चाहते हैं। माँ बाप अपनी जेब से पैसे देते हैं, अपनी संतान को संपत्ति दे देते हैं, क्या क्या नहीं देते हैं? कहते हैं मेरे पास है, जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा है, लेट मी गिव इट टू माय चिल्ड्रन, ताकि उनको तकलीफ ना हो। लेकिन ये हम मोह में करते हैं, मोह में, मेरे बच्चों को देना है, लेकिन हम संतान के दूसरे बच्चों को नहीं देते। वो कह रहे जब आप कंप्लीट हो जाते हो, संपूर्ण हो जाते हो, आपके अंदर अनकंडीशनल लव आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी पूर्णता में से पूर्णता निकाल के औरों को दे रहे हैं, औरों को भी पूर्ण बना रहे हैं, औरों को भी कंप्लीट बना रहे हैं, औरों को भी सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, औरों के जीवन में खुशियां लेके आ रहे हैं, औरों के जीवन में बाहर लेके आ रहे हैं, औरों के जीवन में आनंद लेके आ रहे हैं। इसलिए हमारे वेदों में एक मंत्र आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् इव अवशिष्यते। संकेत में क्या होता है, संकेत भाषा में अगर दो शब्द इकट्ठे हो जाते हैं, दो शब्द नहीं कहना चाहिए, दो साउंड दो ध्वनियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनका थोड़ा साउंड चेंज हो जाता है, ध्वनि चेंज हो जाती है। जैसे देवा, देवा खत्म हुआ आ से, आगे आया इंद्र, अगला शब्द है देव इंद्र, आ और अगला शब्द ई शुरू हो रहा है, देवेंद्र हो जाएगा, देवा इंद्र नहीं देवेंद्र। तो संधि होने से दोनों साउंड्स को या ध्वनियों को मिलने से एक तीसरा साउंड, तीसरी ध्वनि प्रकट हो जाती है। ओम पूर्णमदः, पूर्ण मतलब पूरा अदा करता, दैट दैट इज फुल, ये पूरा है। पूर्णम इदम, इदम का अच्छा ये, दिस इज ऑल्सो फुल। पूर्णमदः, ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम, दैट इज फुल, दिस ऑल्सो इज फुल। पूर्णात् पूर्णम उदश्यते, फ्रॉम फुलनेस कम दैट फुलनेस, पूर्णता से ही पूर्णता दूसरी आती है। पूर्णस्य पूर्णम अदः, अर्थात टेकिंग फुलनेस फ्रॉम फुलनेस, पूर्णता से ही हम पूर्णता ले रहे हैं। फिर हम कहते हैं पूर्ण इव अवशिष्यते, अवशिष्यते अर्थात फुलनेस इंडीड रिमेन्स, अर्थात दैट इज फुल, दिस ऑल्सो इज फुल, फ्रॉम फुलनेस कम दैट फुलनेस, टेकिंग फुलनेस फ्रॉम फुलनेस, फुलनेस इंडीड रिमेन्स। कभी आपने देखा ज्योति, एक ज्योत जल रही है, उससे आप दूसरी ज्योत जलाते हैं, पहली ज्योत को फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी भी वैसे जलती है, वही आभा लेके आ जाती है। इसलिए कहा गया जब आप पूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप अपनी कंप्लीटनेस भी औरों को दे सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् इव अवशिष्यते, दैट इज फुल, दिस ऑल्सो इज फुल, फ्रॉम फुलनेस कम्स दैट फुलनेस, टेकिंग फुलनेस फ्रॉम फुलनेस, फुलनेस इंडीड रिमेन्स। तो विचार कीजिएगा, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज परफेक्ट एंड कंप्लीट, एंड बिकॉज ही इज कंप्लीटली परफेक्ट, ऑल एमनेशन फ्रॉम हिम सच एज दिस फिनोमिनल वर्ल्ड आर परफेक्टली इक्विट एज ए कंप्लीट होल, वॉट एवर ही प्रोड्यूस ऑफ द कंप्लीट होल इज ऑल्सो कंप्लीट बाय इटसेल्फ, एंड बिकॉज ही इज द कंप्लीट होल, इवन दो सो मैनी कंप्लीट यूनिट एमिनेट फ्रॉम हिम, ही रिमेन द कंप्लीट बैलेंस, ऐसा कहा गया है श्री ईशा उपनिषद में। तो होली का त्योहार हमको अंतर की यात्रा करते हुए, कर्मों का विनाश करते हुए, वासनाओं का विनाश करते हुए, हमें नारायण के जाप को ले जाते हुए, परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा को हर वक्त अपने जीभ पे लाते हुए, अपने नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, पूर्णता की ओर लेके जा रहा है। जय श्री साईं राम।